ये धवला शास्त्र है जिसे वीरसेन आचार्य ने रचा था। यह मूल ग्रंथ जो षटखंडागम है उसकी यह टीका है, और मूल ग्रंथ की रचना भूतबली आचार्य और पुष्पदंत आचार्य ने की थी। उनके उपदेश दाता थे वो धरसेन आचार्य। जो मूल षटखंडागम का जो पहले में पहली जो गाथा है, सूत्र जिसको कहते हैं, वो ये नमस्कार मंत्र है, नमोकार मंत्र जिसको हम कहते हैं, उसी को यहाँ मंगल सूत्र कहा है। षटखंडागम में पहली में पहली नहीं, वो अभी हम अगला देखेंगे तो पता चलेगा। मैं भी आपके साथ प्रथम बार धवला पढ़ रही हूँ, मैंने आगे के कोई भाग देखे भी नहीं और पढ़े भी नहीं। हाँ, आगे देखेंगे अभी अगली पुस्तक में कौन कौन से मंगलाचरण है। अब यहाँ तक हम आए थे कि आचार्यों का स्वरूप, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, तो अरिहंतों का और सिद्धों का स्वरूप देख लिया हमने। अब आचार्यों का स्वरूप देखते समय उनकी उनको रूपक जिसको कहते हैं उपमा अलंकार, जैसे सिंह समान है, हाथी समान है, तो कौन सी अपेक्षा सिंह समान है आदि बातें अब करेंगे। कल हमने ऊपर 29, 30 और 31 ये तीन गाथाएं पढ़ी थी हमने, उसका ही अभी अर्थ चलेगा। पेज नंबर 50 पर हम आए हैं। ये जो चार लाइन के बाद पांचवी लाइन है जहां से पैराग्राफ नया शुरू हो जाता है, वहां देखेंगे। ऊपर से हम एक एक शब्द का नीचे अर्थ करेंगे। पवयन जल ही जलोयर नायामल बुद्धि शुद्ध छावासो, क्या कहते हैं, प्रवचन रूपी समुद्र के जल के मध्य में स्नान करने से, अर्थात परमागम के परिपूर्ण अभ्यास और अनुभव से। अभ्यास नहीं, खाली वो शब्द ज्ञान की बात यहाँ नहीं है। जब जब कहेंगे, अभी पहले भी बात आई थी कि ये धवला शास्त्र रचने का हेतु क्या है, तो कर्मों की असंख्यात गुणा निर्जरा होती है। तो क्या शास्त्र ज्ञान शब्द ज्ञान या शास्त्र पढ़ने से होती है? तो शास्त्र पढ़ने रूप जो वहाँ विशुद्ध परिणाम चल रहा है, तो उसके साथ जो वितरागता है, ख्याल है ना, तो जिसके वितरागता नहीं है, जिसके सम्यक दर्शन नहीं है, जिसको मुनि योग्य इतनी वितरागता नहीं है, उसको वो असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होगी। परंतु ये उपचार, ये व्यवहार प्रधान शास्त्र है, यहाँ निमित्त की अपेक्षा कथन किया जाएगा, परंतु उसका सही अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ क्या कहते हैं कि परमागम के परिपूर्ण अभ्यास और अनुभव से, अकेला अभ्यास ने वो शब्द रट लिया वो अभ्यास नहीं है, वैसा परिणमन होना उसको उसका अभ्यास कहेंगे, और अनुभव, इसलिए अनुभव शब्द भी डाला गया। जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई है, ये किन की बात चल रही है बिना आचार्यों की, फिर जो निर्दोष रीति से छह आवश्यकों का पालन करते, ऊपर है ना शुद्ध छावासो, छह आवासों ने छह आवश्यकों का पालन करते। अभी तो हमारा नियम सार में विषय चल रहा है छह आवश्यकों का, याद है? हाँ बोलो मंजू बेन। सामायिक, हाँ, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। तो ये जो छह आवश्यक है मुनि के लिए, छह आवश्यक नीचे भी लिखा है, देखो फुट नोट में जो सेकंड लिखा है ना, दो आंकड़ा, उसमें क्या कहते हैं, शुद्ध शुद्ध छावासो यानी शुद्ध है, इसे छ आवश्यक है। कौन से? अभी पहले उसका आवश्यक क्या है उसका बात करें। न वसो आवसो, जो वश नहीं है वो अवश्य है। अवसस्य कम्मम आवासगम, और जो अवश्य है, अवश्य कौन है? मुनि अवश्य है ना। तो बाकी मिथ्यात्वी जीव तो मिथ्यात्व को वश हो रहे हैं और मुनि तो अवश्य है, और ऐसे जो अवश्य है उनका जो कर्म है, उनका जो कार्य है, उसको आवश्यक कार्य कहते हैं। व्युत्पत्तौ अपि सामायिकादि आदिषु एव अयम शब्दो वर्तते। अभी उसके दो लाइन छोड़ दे, नीचे आता है सामायिकम से, तीसरी लाइन में है अंत में। छह आवश्यक कौन से, उनके नाम बताए। सामायिक चतुर्विंशति स्तव, स्तव कहो यानी स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग कहो या कायत्सर्ग कहो, एक ही बात है। इति अमे इति अमूनि षडावश्यकानि, ये छह आवश्यक है। ये मूला मूलाराधना मूलाचार वगैरह जो है उसमें आती है ये बातें। तो अभी हम ऊपर चलेंगे कि निर्दोष रीति से छह आवश्यकों का पालन करते हैं। मेरु व निपकंपो, मेरु पर्वत के समान निष्कंप है। सूरो यानी जो शूरवीर है, पंचाननो वज्जो, और सिंह के समान निर्भीक है। पंचानन सिंह को कहते हैं, पंचानन कहो, अनन यानी मुख, पंचमुख भी कहते हैं उसको। सिंह के लिए संस्कृत शब्द है पंचानन, प्राकृत में भी है। वज्जो जो निर्दोष है, देश कुल जाई शुद्धो, देश कुल और जाति से शुद्ध है। आचार्यों की बात है ना, तो आचार्य पदवी पर वही विराजमान हो गए। पहले में पहले दीक्षा देते समय भी वो कौन से जाति के है, कुल के है, उनके कैसे आचार विचार, वो सब यानी व्यावहारिक भी उनकी बातें देखी जाती है। ऐसे कोई आया मुझे दीक्षा दे दो चलो ले लो, ऐसी बातें नहीं होती। तो देश कुल और जाति से जो शुद्ध है, सोमंगो सौम्य मूर्ति है, संग भंग उन्मुक्को, संग यानी परिग्रह दोनों प्रकार के, उन्मुक्त यानी उसके मुक्त है, यानी अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित है, दोनों प्रकार के। गयन व निरुवलेओ, गयन यानी गगन यानी आकाश, आकाश के समान निर्लेप है। आईरियो एरिसो होई, आचार्य ऐसे होते हैं, ख्याल है, ऐसे आचार्य परमेश्वरी होते हैं। संगहन उग्गह कुशलो, जो संघ के संग्रह अर्थात दीक्षा और अनुग्रह करने में कुशल है, क्योंकि आचार्य है तो उनके अंदर जो संघ है मुनि संघ, तो मुनि संघों के जो कुछ आचार विचार होते हैं वहां, तो दीक्षा देना आदि जो कार्य होते हैं, उनको प्रायश्चित आदि देना, ये सब उसमें ये कुशल होते हैं, कुशल यानी उसमें एक्सपर्ट होते हैं। अनुग्रह यानी उसमें निमित्त रूप होते, अनुग्रह का ऐसा अर्थ होता है उपकार। तो संघ पर क्या अनुग्रह करते हैं, तो उनको दीक्षा देना, दीक्षा शिक्षा देना तो वो उनका होता है उपाध्यायों का, तो दीक्षा शिक्षा इनमें भी आचार्यों के इसमें भी अंतर्भूत होता है, क्योंकि वे स्वयं शास्त्र के पारगामी है। और जो ये अन्य लोगों को भी, अन्य मुनियों को भी कौन करेगा, कि जो अपने में फर्म है, प्रधानता है ना उनमें, अपना भी कार्य करे और दूसरे का। ऐसा नहीं कि आचार्य तो दूसरे का ही कार्य करे, ऐसी बात नहीं। जो स्वयं का कार्य करने में अत्यंत कुशल है और वो करते करते अन्यों से भी ये कार्य करवा लेते हैं, प्रायश्चित वगैरह विधि होती है उनको, कैसे मुनियों के योग्य आचार कैसे होते हैं, उनका उपदेश देते हैं, पंचाचार में स्वयं प्रवीण है और दूसरों से करवा लेते हैं अन्य मुनियों से, इसलिए यहाँ अनुग्रह करने में कुशल है। कहाँ पंचाचार की बात कल आई थी, आचार्य क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पंचाचार में प्रवीण है। जो सूत्र अर्थात परमागम के अर्थ में विशारद है, आई ना बात, यानी खाली उपाध्याय सभी द्वादशांक को जानते हो गए और ये नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। उसमें तो ये बिल्कुल विशारद है, एक्सपर्ट है, स्पेशलाइजेशन है उनके। जिनकी कीर्ति सब जगह फैल रही है, ऊपर लिखा था देखो, सुप्तत्थ विसारियो पहिय कित्ती, और सारण वारण सोहन, जो सारण अर्थात आचरण, वारण अर्थात निषेध, और शोधन अर्थात व्रतों की शुद्धि करने वाली क्रियाओं में निरंतर उद्युक्त होते हैं। मुनि योगी जो कुछ विशिष्ट क्रियाएं बताई है, उनकी तो क्रिया तो अंतरंग में लीनता ही है, परंतु बाह्य में भी जो कुछ यथा योग्य मुनि योग्य उनके जो आचार होते हैं उसमें वे प्रवीण होते हैं, उसमें वो निरंतर उद्युक्त होते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी समझना चाहिए। ऐसे आचार्यों को नमस्कार हो, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। वो रत्नगरण श्रावकाचार में भी हमने आचार्यों की वो बातें देखी थी ना, उसमें कौन कौन से उनमें गुण होते हैं। अब उपाध्याय की बात करेंगे आप। नमो उपाध्यायाणम, उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार हो। 14 विद्यास्थान के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते हैं। आचार्य में क्या लिखा था देखो जरा, लेफ्ट साइड में पहली लाइन, 14 विद्यास्थानों के पारंगत है, ख्याल है ना, और ये 14 विद्यास्थानों का उपदेश देने वाले, व्याख्यान करने वाले हैं। बड़े बड़े संघ होते थे पहले, तो हजारों मुनियों के संघ हुआ करते थे, तो उनके सबके मुख्य वो तो आचार्य, और उनके जो पठन पाठन के जो अधिकारी थे ये उनका डिपार्टमेंट था, स्वयं पढ़ना और पढ़ाना, तो इनको उपाध्याय पदवी दी जाती थी। आचार्य हो, उपाध्याय और साधु, ये बेसिकली तो साधुओं के जो उनके 28 मूल गुण आदि जो उनकी बाह्य क्रियाएं हैं, बाह्य शुभ भाव भी है, और अंतरंग में जो स्थिरता है वो तो समान है। तीन कषाय के अभाव पूर्वक वहाँ वीतरागता तीनों को है, फिर भी उनमें जो विशेषताओं की अपेक्षा है, किसी को आचार्य, किसी को उपाध्याय, किसी को सामान्य साधु कहे जाते हैं, तो उसकी अपेक्षा यहाँ विवेचन चल रहा है। तो 14 विद्यास्थान का अर्थ होता है 14 पूर्व। 14 पूर्व जब कहेंगे तो उसमें 12 अंगों की बात आती है, यानी द्वादशांग के ज्ञाता है और द्वादशांग का अध्ययन कर स्वयं करते और वो सिखाते हैं, उसका व्याख्यान करते हैं, पढ़ाते हैं, मुनि संघ को पढ़ाते हैं। वहां कोई श्रावक हो, अन्य भी कोई हो, तो वे भी उनसे पढ़ते हैं। अथवा तत्कालीन परमागम के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते हैं। ये बात आई ना तत्कालीन, कल भी तत्कालीन शब्द आया था, देखो कल की सेकंड लाइन 50 पेज, तत्कालीन स्व समय और पर समय में, और यहाँ लिखा तत्कालीन परमागम में। अभी एक निश्चित हुआ ना कि समय का अर्थ परमागम है, स्व समय यानी जैन जो परमागम है, और पर समय यानी अन्य मतियों के जो शास्त्र है। ये समय सार में जो स्व समय पर समय आता है, शुद्धात्मा और पर पदार्थ, ऐसी यहाँ बात नहीं है, क्योंकि तत्कालीन लिखा क्योंकि अभी भी कोई आचार्य है तो अभी जितना शास्त्र उपलब्ध है उतने शास्त्रों के वो पारगामी हो गए, ख्याल है ना। ये मैक्सिमम उनको कितना ज्ञान है ये बात यहाँ रखी है, तत्कालीन नहीं, उस पीरियड में उनका जो कुछ है।
देखो अभी एक मिनट समझ लीजिए, अभी तो कुंद आचार्य ने जो शास्त्र लिखे हैं तो उनका व्याख्यान उपाध्याय करेंगे तत्कालीन। अभी आदिनाथ भगवान के समय में जो कोई रचना की होगी उसके बाद किन्नी अन्य भी शास्त्रों की रचना की होगी तो वो तत्कालीन हो गया, इस तरह लेना।
यानी अभी जो गणधरादि थे या उनके पश्चात वाले जो आचार्य थे जो द्वादशांग के ज्ञाता थे, तो तभी के आचार्य वो पूरे 12 अंगों का ज्ञान था उनको। अब कुनकुंद भगवान वो भी आचार्य है, आचार्य के सभी गुण उनमें भी है, फिर भी जब कुनकुंद हुए तब तत्कालीन कितना ज्ञान रहा था, बहुत अल्प ज्ञान रहा था, ख्याल है ना, ये तत्कालीन कहलाता है। अब ये धर्मसेन आचार्य स्वयं आचार्य थे परंतु उनका ज्ञान भी वो पूर्व का कुछ भाग इतना ज्ञान था, ये तत्कालीन इतना ही ज्ञान रहा था। उनके पश्चात भी जो अमृतचंद्राचार्य हुए, अमृतचंद्राचार्य के समय में कितना अपना द्वादशांग का कितना ज्ञान रहा था, जितना उपलब्ध था उसके वे ज्ञाता थे, ये तत्कालीन से मतलब है इसमें। हाँ, स्व समय ने जैन दर्शन के शास्त्र, और पर समय ने अन्य मतियों के दर्शन, जो उनके जो तत्व वगैरह है, क्योंकि दोनों के जाने बिना यही सच्चा है ये निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि जो जैन कुल में जन्मा है वो तो कहेगा ये हमारे ही शास्त्र सच्चे है, और कोई वैदिक होगा तो वो कहेगा हमारे ही शास्त्र सच्चे है, तो दोनों का अभ्यास करके तुलनात्मक, जिसको कंपेरेटिव स्टडी कहेंगे, और कंपेरेटिव स्टडी करके यही सच्चा है, जो निर्णय होगा वही सच्चा निर्णय होगा, नहीं तो अपना तो सबको अच्छा लगता है। उसके जो तत्व है ना, जैसे वो कोई अन्य मति क्या कहते हैं, ज्ञान भिन्न है आत्मा भिन्न है, और जो दोनों का संयोग हुआ तब जाके आत्मा जानने लगा, क्या ये सच हो सकता है? तो इसके लिए अपने क्या तत्व है, उनके क्या है, तो उनके तत्व कैसे झूठे हैं? ये न्याय जो होता है, न्याय की भाषा अलग होती है, यानी उसके लॉजिकली प्रूव करना पड़ता है। तो ये न्याय के जो बेसिक सिद्धांत होते हैं, तो उसकी कसौटी पर कस कर फिर वहाँ बताया जाता है कि ये ऐसा है, इसमें ये गलत है, ये इसका हेतु अलग चला जाता है, इन्होंने ये दृष्टांत दिया जाए, परंतु ये दृष्टांत कैसे गलत होता है, हमें न्याय की भाषा अभी मालूम नहीं है। उसमें वो साधन हेतु व्यभिचार आदि बातें आती है, परंतु उससे ये सिद्ध कर लेते हैं कि ये जिनागम ही सच्चा है, ख्याल है? तो ये तत्कालीन परमागम के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते हैं, वे संग्रह अनुग्रह आदि गुणों को छोड़कर, आचार्यों में संग्रह अनुग्रह लिया था, संग्रह ने दीक्षा देना आदि, अनुग्रह ने उनके जो कुछ यथा योग्य कर्तव्य होते हैं ना, जैसे मुनि आहार, अन्य मुनि जो है आहार आदि करके आते हैं और उनके पास अपने दोष प्रकट करते हैं, फिर उसको सुनना और उनको यथा योग्य प्रायश्चित विधि से उनका भी विशिष्ट आचार करवा लेना, इनमें इनका अनुग्रह होता है। तो ऐसी बातें जो आचार्य करते हैं, वे उपाध्याय में वे गुण नहीं है, संग्रह अनुग्रह वाले। अभी बताए ना, अनुग्रह ने प्रायश्चितादि विधि, अन्य मुनियों से जो कुछ बातें होती है, क्रियाएं होती है, वो करवा लेना, उसको अनुग्रह कहते हैं, क्योंकि उनका वहां डिसिप्लिन चलता है, अनुशासन आचार्यों का चलता है, और आचार्यों की ये जो यानी जिनागम के अनुसार जो आचार होते हैं मुनियों के लिए, मुनियों के लिए आवश्यक जो क्रियाएं हैं, मुनियों का जो विशिष्ट आचरण है, उस संबंधी स्वयं तो उनका आचरण शुद्ध है ही है, अन्य मुनियों से भी करवा लेते हैं, उनको उपदेश देते हैं, उनमें कुछ त्रुटि हो तो उसको वो दिखाते हैं, उनसे प्रायश्चित विधि से उनको शुद्ध करवा लेते हैं। तो इस तरह से ये अनुग्रह है,
वो अलग है, वो निमित्त के रूप से लिया हुआ है। अभी यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि देखो, हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा था, वहाँ लिखा है कि शिक्षा दीक्षा देने वाले आचार्य दीक्षा भी देंगे और शिक्षा भी देंगे। शिक्षा यानी सजा नहीं, शिक्षा यानी शिखामण जिसको कहते हैं,
यानी उपदेश की संबंधी, आचार संबंधी।
अभी देखिए, पंचाचार का स्वयं भी पंचाचार पालते हैं और औरों को भी, औरों से भी पलवाते हैं, मतलब पंचाचार। तो ये जो बातें हैं वो आचार्यों के अनुग्रह की अपेक्षा से यहाँ लेना।
तो संग्रह अनुग्रह आदि गुणों को छोड़कर पहले कहे गए आचार्य के समस्त गुणों से युक्त होते हैं, यानी अभी जो हमने आचार्यों के गुण इतने सारे देखे थे, तो उसमें संग्रह अनुग्रह छोड़कर बाकी सभी उपाध्याय में भी पाए जाते हैं। जो साधु, ये ऊपर का पढ़ना है पहले, 32वां ऐसे वेगड़े है क्या सर? चौदह स पूव महो यही महिगम शिवथियो शिवथीणम सीलंधराणवत्ता हो मुनि सो उच्छायो। जो साधु 14 पूर्व रूपी समुद्र में प्रवेश करके, 14 पूर्व महोय महिगम अर्थात परमागम का अभ्यास करके मोक्ष मार्ग में स्थित है शिवथियो, तथा मोक्ष के इच्छुक शीलंधरो अर्थात मुनियों को उपदेश देते हैं, शिवथीणम शीलंधराण और वत्ता यानी वे वक्ता है, उन मुनीश्वरों को उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं, यानी जो मुनि संघ में अन्य मुनियों को जो शास्त्र पढ़ाते हैं उनको यहाँ उपाध्याय कहा है। ऐसे उपाध्याय उनको नमस्कार हो। देखो इसके नीचे जरा एक मैं बताना चाहती हूँ, नीचे की फुटनोट में एक नंबर जो है ना, नीचे का पैराग्राफ, बार संगम जिनक खादम सज्जायम कथितम बुधे। क्या कहते हैं, जिनक खाद यानी जिनेंद्र भगवान ने बताए हुए 12 अंग है उसको सज्जाय कहा है, उसको सज्जाय कहते हैं। उपदेश ही सज्जायम तेनु वज्जाऊ उच्चंदी, और जो सज्जाय का उपदेश देते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं। यानी ये सज्जाय माला कुछ होती होगी आप में, होती है ना उस क्या स्वाध्याय के लिए कहते हैं, किसके लिए कहते हैं? ये श्वेतांबरों में कहते ना खास सज्जाय सज्जाय, नहीं नहीं अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने हाँ वही ये स्वाध्याय ने द्वादशांग जो मूल है उसी को सज्जाय कहा है, यहाँ बताए ना उलझाए। बाद में उन्हें उ व ज आदि शब्दों पर भी विस्तार से समझाया है, अभी उसमें हम नहीं जाएंगे, अब आगे पढ़ते हैं। अब नमो लोए सौव साहुणम, लोए ने लोक, लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार। तो ये अभी आजकल ये फैशन चली है कि जैन धर्म कितना महान है, ये विश्व के सभी साधुओं को नमस्कार करता है। अभी साधु हम देख रहे हैं ना टीवी पर, वो कुंभ मेला होता है तो सभी नहाने चले जाते हैं, क्या उनको साधु कहना क्या है ना? तो साधु किसको कहना उसकी बात अभी पहले ही कहेंगे। तो साधु पद के योग्य जो है उनको यहाँ साधु कहा, दिगंबर मुनिराज भावलिंगी उनको साधु कहा है। लोक अर्थात ढाई द्वीपवर्ती सर्व साधुओं को नमस्कार हो, वो साधुओं को हुआ है धू करना, उसको उकार देना। देखो साधु कहाँ पर हो गए, पूरे लोकाकाश में मनुष्य जहाँ है वहीं पर हा? तो ढाई द्वीप में हो गए कि लोक अर्थात ढाई द्वीप प्रति सर्व साधुओं को नमस्कार हो। अब साधु किसको कहना, जो अनंत ज्ञानादि रूप शुद्ध आत्मा के स्वरूप की साधना करते हैं उन्हें साधु कहते हैं। साधना करने वाले वे साधु कौन सी साधना करते हैं, तो अपना जो शुद्धात्मा है, निज शुद्धात्मा वो कैसा है, अनंत ज्ञानादि रूप है, सामर्थ्य कितनी है, उस सामर्थ्य की उसका लक्ष्य करने से पर्याय में वो प्रकट होने वाला है। ये इजीएस्ट वे है, क्या करना है, जो सामर्थ्य है पहले उसको स्वीकार करना है और फिर उस सामर्थ्य रूप में हूँ ऐसी प्रतीति सहित उसी में लीन होंगे, उसी को जानते रहेंगे तो पर्याय में ये सामर्थ्य प्रकट होने वाला है। तो क्या कहते हैं, अनंत ज्ञानादि रूप शुद्ध आत्मा के स्वरूप की साधना करते हैं उन्हें साधु कहते हैं। ये पर्याय के शुद्ध की बात नहीं है, कारण परमात्मा की जिसको त्रिकाल शुद्ध कहा है उसकी यहाँ बात है। सामान्य को शुद्ध कहते हैं, सामर्थ्य जो है उसको यहाँ शुद्ध कहा है। जो पांच महाव्रतों को धारण करते हैं, तीन गुप्तियों से सुरक्षित है और 18,000 शील के भेदों को धारण करते हैं और 84,00,000 उत्तर गुणों का पालन करते हैं, वे साधु परमेष्ठी होते हैं। अब ये जो हमने गुण देखे वो सभी में आचार्यों में भी है, उपाध्यायों में भी है, साधु में भी, क्योंकि सभी बेसिकली तो साधु है ही है। आचार्यों में कुछ अधिक विशेषताएं हैं उसकी हमने चर्चा की थी। तो पहले में पहले महाव्रत, पांच महाव्रत होते उनके, तीन गुप्त, अभी महाव्रतों के तो नाम मालूम है ना, बताओ जरा, पांच महाव्रत। हाँ 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 बराबर है। हाँ 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 देखो, पांच पाप मालूम है कि नहीं मालूम, पांच पाप कौन से है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अभी उसको अ लगाओ और आगे महाव्रत जोड़ दो, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह। अभी परिमाण नहीं उनको, वो परिमाण वो अनुव्रत में लेना, ये तो परिग्रह रहित है इसलिए अपरिग्रह लगाना, अपरिग्रह महाव्रत। ये पांच महाव्रत है, पांच महाव्रतों को धारण करते हैं तीन गुप्तियों से सुरक्षित है, वो स्वरूप में गुप्त हो गए हैं, तो मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। और 18,000 शील के वेदों को धारण करते हैं, अंतरंग में लीनता ही शील है मुनियों का। वो 18,000 प्रकार से बताए, अपना यहाँ विषय नहीं है वो। और 84,00,000 उत्तर गुणों से युक्त होते हैं, उनको यहाँ साधु कहते हैं। वे साधु कैसे हैं, उसके लिए अभी हम ऊपर की गाथा पढ़ेंगे, 33 नंबर की। जैसे आचार्यों को अलग अलग उपमा दी थी, वैसे साधुओं को भी उपमा देकर समझाया है। सिंह गय वसहमी पशु मारुद सूरु अहि मंदर इंदु मणि खिदि उर गंबर सरिसा परम पय विमग गया साहू। देखो, एक एक शब्द लेके उसको नीचे अर्थ देखेंगे। सिंह है ना, सिंह तो सिंह के समान पराक्रमी, गय यानी गज यानी हाथी, गज के समान स्वामी स्वाभिमानी या उन्नत, वस यानी वृषभ यानी बैल, तो बैल के समान भद्र प्रकृति, मी यानी मृग, मृग के समान सरल, पशु यानी पशु, पशु के समान निरीह गोचरी वृत्ति करने वाले, निरीह यानी इच्छा रहित, निरीह, निरीह गोचरी, गोचरी क्यों कहा, गो यानी गाय कैसी चरती है, तो उसकी उपमा दी है ना। उनको कोई अपेक्षा नहीं है, जहाँ आहार लेने के जाते हैं तो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अपेक्षा से वो आहार ग्रहण करते हैं वहाँ। हाँ, गोचरी, हाँ बोलना।
देखो यहाँ पर गोचरी वृत्ति कहा है, ये बताना चाहते हैं कि जैसे गाय जब वो क्या कहते हैं घास खाने को जाती है, तो घास खाते वक्त इधर उधर देखती नहीं है, सिर्फ घास खाती है, वो कैसा घास है, क्या घास है, कुछ नहीं। वैसे ये जो आचार्य साधु होते हैं, वह जब भोजन करेंगे तो पहले तो इच्छा रही जाएंगे कि ऐसे ही टाइप का मुझे भोजन चाहिए वगैरह, ऐसी उनकी कोई ख्वाहिश नहीं रहती ना फरमाइश रहती है। अब वे जब खाएंगे तब ये घर में कितना क्या है, टीवी है कि नहीं, एसी लगा है कि नहीं, ऐसे इधर उधर नहीं देखेंगे, तुम्हारी कमाई कितनी है वगैरह बातों में ध्यान नहीं देंगे। जो भोजन आएगा उसको गोचरी वृत्ति से लेंगे, यहाँ तक के सामने वाले कोई स्त्री भोजन देती है तो उसके तरफ देखेंगे भी नहीं, उसको गोचरी वृत्ति कहते हैं। ख्याल में आया? तो यहाँ जो बताया है निरीह यानी इच्छा रहित गोचरी वृत्ति करने वाले और गधा जब घास खाता है तो कैसा खाता है मालूम है आपको, मूल से उखाड़ कर खाता है, और गाय जो खाती है वो ऊपर ऊपर से खाती है, मूल को कभी हाथ नहीं लगाती। ऐसे हमें गधा भी बनना है, किस अपेक्षा से, कि ये जो मिथ्यात्व है उसको मूल से उखाड़ के फेंक देना है और आगे जाके गोचरी करनी है। ख्याल में आया? देखो आचार्य एक एक जो उदाहरण देते हैं वो इतना परफेक्ट होता है, सिर्फ हमें समझने की गरज है। ख्याल में आया? चलो आगे।
और हम कहीं किसी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई बच्चे हो गए तो पहले उनकी भी, उनके साथ ये कितना अच्छा है, अरे कितना क्या कर रहा है वगैरह वगैरह बोलते हैं ना, तो ऐसी कोई मुनियों की ऐसी बातें नहीं होती। मौन व्रत धारण करके निकलते हैं आहार के लिए, और फिर मौन अवस्था में वो सब आहार वगैरह ग्रहण करते हैं, तो उनकी ये गोचरी वृत्ति होती है। उसमें और भी अन्य अन्य प्रकार से उसको उपमा दी है, भ्रमर की भी उपमा दी है, जैसे भ्रमर फूल में से मध लेता है, ऐसा नहीं कि फूल को ही पूरा शोषण कर दे, ऐसी नहीं होती। वैसे श्रावक स्वयं के लिए आहार बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो ये उसमें से थोड़ा सा ग्रहण करते हैं, चलो अच्छा लगा, चलो बहुत पेट भर के खा लो, ऐसा भी नहीं होता। ये आहार के संबंध में जो कुछ विशेषता है वो आचार ग्रंथों में मिल जाएगी हमें। अभी हम यहाँ यहीं रुकते। तो पशु के समान निरीह गोचरी वृत्ति करने वाले मारुद यानी मारुत यानी मरुत यानी पवन, वायु, पवन के समान निस्संग या सब जगह बिना रुकावट के विचरने वाले, विचरना यानी भ्रमण करना यानी चलना, तो पवन के समान निस्संग है, निस्संग है ने संग का अर्थ हमने क्या किया था, परिग्रह से रहित और बिना रुकावट के कहीं भी जाने वाले। फिर उसके बाद क्या कहा, सूर्य, सूर्य यानी सूर्य, सूर्य के समान तेजस्वी या सकल तत्वों के प्रकाशक, वही यानी उदधि यानी सागर, उदधि अर्थात सागर के समान गंभीर, मंद यानी मंदराचल पर्वत जो मेरु पर्वत है, मंदराचल अर्थात सुमेरु पर्वत के समान परिशह और उपसर्गों के आने पर अकंप और अडोल रहने वाले, जैसे मेरु पर्वत निष्कंप है, कितनी भी तेज हवा चले तो भी वो डिगेगा नहीं, सभी पर्वतों में बड़ा पर्वत है वो तो। इंदु यानी चंद्र, चंद्रमा के समान शांतिदायक, मणि यानी रत्न, मणि के समान प्रभापुंज युक्त, क्षिति यानी क्षिति, क्षिति यानी पृथ्वी, क्षिति के समान सर्व प्रकार की बाधाओं को सहने वाले, उरग यानी सांप, उरग अर्थात सर्प के समान दूसरे के बनाए हुए अनियत आश्रय यानी वसती का आदि में निवास करने वाले, क्या कहते हैं सांप, हमें मालूम है जो चींटी है वो अपने लिए वो मिट्टी का घर बनाती ना, वारुल कहते, क्या कहते उसको, हाँ एंटिल, हाँ चींटी नो जो दर, अच्छा तो वो क्या कहते, सांप आकर उसमें रहता है, मराठी में कहते आयत्या बिलावर नागोबा, ये उस वो तो बिल बनाते ना, वो ऐसा घर बनाते तो बीच बीच में ऐसा बिल होते अंदर जाने के लिए बाहर निकलने के लिए, तो सांप स्वयं तो बनाता नहीं है और उसमें रहता है आराम से, तो ये वहां तो ये तो हाँ खुद नहीं बनाते ना, इनके लिए किसी ने बनाया हुआ तो उसमें रहते हैं, स्पेशली इनके लिए कोई वसती का बनाई हुई, ऐसे त्यागी निवास वगैरह बनाते और ये वहां जाके रहे बरो चलो आराम से दो चार महीने, ऐसा नहीं होता है। उनके भी जो वर्षा काल नहीं होगा तो कहीं एक जगह में वो तीन दिन या उतने ही, हाँ ज्यादा रहते नहीं है, ज्यादा रहने से क्या होता है वहाँ, वो तो राग पैदा होता है वहाँ के लोगों से।
देखो यहाँ पर दो बातें हैं, यहाँ यहाँ सर्प की उपमा दी है और सर्प बहुत आलसी होता है, वो अपने लिए कुछ नहीं बनाता है, ऐसे ये मुनिराज है ऐसा नहीं बताना है, इनको तो ये बताना है कि उनके निमित्त से या स्वयं बने हुए ऐसे घर में वसती का यानी रहने का ठिकान, उसमें वे नहीं रहते, ख्याल में। अभी दूसरी बात ये है कि अभी आपने जो बताया कि दूसरे के बनाए हुए घर में रहने के लिए क्या तकलीफ है, तो कहते हैं कि वो बनाने में जो हिंसा होती है उस हिंसा का अनुमोदना दिया जैसा होता है, इसलिए जो अभी आजकल फैशन हो गई है त्यागी निवास बनाने की, ये तो श्वेतांबरी मान्यता है, ये जो उपासरा बनाते हैं तो वही है, वहां जाके मुनि रहते हैं, ये योग्य नहीं है, मुनि योग्य नहीं है, ख्याल में। तो यहां ये बता रहे हैं कि मैं दो बातें बताना चाहता हूं, सर्प के जैसा वह कोई इंक्रोचमेंट नहीं करते, जो कहीं वन में ऐसा जो क्या कहते जीर्ण शीर्ण ऐसा कोई घर होगा,
कोई खंडर
होगा, तो वहां जाके रहेंगे, जहां कोई अन्य लोग रहते नहीं और किसी ने बोला इधर नहीं आने का तो रहेंगे भी नहीं, ऐसा है, तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं।
और अनियत आश्रय कहा, यानी बस वहां जाके मुकाम कर लिया, वही ये उनके ऐसा हम कह नहीं सकते, ये मुनियों का गांव है या ये मुनियों का ठिकाना है, किसी मुनि का नाम अगर लेकर हम कहेंगे ये इनका निवास स्थान है तो ऐसे उनके कोई निश्चित निवास स्थान नहीं होता है मुनियों के लिए।
आगे
अंबर अर्थात ऊपर लिखा ना, उरग अंबर, अंबर यानी आकाश, आकाश के समान निरालंबी या निर्लेप और सदाकाल सरीसा परम पय विमग गया साहू, परम पद अर्थात मोक्ष का अन्वेषण करने वाले होते हैं, ये साधु की बात है ना, साधु कैसे उसकी बात चल रही है,
अन्वेषण का अर्थ शोध,
खोज शोध
यानी मोक्ष मार्ग में स्थित है और मोक्ष की खोज में है,
यानी परम पद का अन्वेषण करने वाले यानी उसी की साधना करने वाले, साधु कहा ना, साधना करने वाले वे साधु, इस तरह से क्या कहते हैं, संपूर्ण कर्म भूमियों में उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए की बात है। ये साधु कहाँ पर हो गए? कर्म भूमियों में हो गए, क्योंकि भोग भूमि में कहाँ, कौन से गुण स्थान तक जा सकते हैं भोग भूमि वाले जीव? चौथे के ऊपर कोई नहीं जाएगा, पांचवे में कोई नहीं जाएगा, परंतु साधु विहार करके भोग भूमि में जा सकते हैं। हाँ, तो क्या लिखा? कर्म भूमि में उत्पन्न हुए साधु की बात की, विहार करके जो चारण रिद्धिधारी आदि है तो वो भोग भूमि में भी जाएंगे, ऐसा भी आता है। वो भोग भूमि में उपदेश भी दिया किसी जीव को, वहां जाकर चारण रिद्धिधारी मुनि ऐसे होते हैं, वे जा सकते हैं। इसलिए कर्म भूमि में उत्पन्न हुए, क्योंकि कर्म भूमि का ही जीव मोक्ष तक का पुरुषार्थ होगा उसका, यानी साधु के गुण स्थान कर्म भूमि वाले जीव को, कर्म भूमि में उत्पन्न हुए जीव को ही होगे। तो संपूर्ण कर्म भूमियों में उत्पन्न हुए, क्योंकि लोए सव लिखा है, लोक में सर्व, लोक में सर्व यानी कहाँ कहाँ हो गए? कर्म भूमियों में साधु हो गए। तो जहाँ जहाँ साधु है उन सभी साधुओं को नमस्कार करते हैं। तो अभी जितने हैं उतनों ही को नमस्कार करेंगे ना, कि जो नहीं है उसको भी करेंगे? त्रिकालवर्ती, तो क्या कहते हैं, संपूर्ण कर्म भूमियों में उत्पन्न हुए त्रिकालवर्ती साधुओं को नमस्कार। भूतकाल में जो हो चुके, वर्तमान में जो है और भविष्य में जो बनेंगे, अभी बने नहीं है, अभी अन्य पर्यायों में स्थित है, तभी शंकाकार आगे पूछेगा कुछ न कुछ शंका।
यहाँ साधुओं में धूरस्व करना, रस्व ही साधु,
साधुओं को धूरस्व हो जाता है।
और दूसरी बात देखो, स्वामी जी कभी कभी ऐसा भी बोलते थे, नमो लोए त्रिकाल वर्तते सव साहूणम, तो वो बात यहाँ से है।
त्रिकाल वर्तते सव अरियंताणम, नमो लोए त्रिकाल वर्तते सव सिद्धाणम, ऐसे कहते थे वो, जब मंगल मांगलिक कहते थे ना, आपने सुना होगा। उनका धवला का अभ्यास था स्वामी जी का, और शुरू में उन्होंने धवला के ऊपर प्रवचन भी किए थे, तभी टेपिंग की सिस्टम नहीं चलती थी उनके, उसके बाद वो नवनीत भाई कोई थे, उन्होंने उनके द्वारा ये हुआ। हाँ, नियम सार में उनके वाक्य है कि धवला का अभ्यास साधारण जीव नहीं कर सकते, तो स्वामी जी ने हमको आशीर्वाद दिया कि हम सब कुछ विशेष हैं। हाँ, दर्शन ज्ञान में उसमें आया था, आपने तो टाइप किया, आपको तो मालूम है। हाँ, देखो, पांच परमेष्ठियों को नमस्कार करने में, इस नमस्कार मंत्र में जो सर्व और लोक, लोए सव है ना, सव ने सर्व और लोए ने लोक पद है, वे अंत दीपक है। पहले हमने चर्चा की थी अंत दीपक, मध्य दीपक और आदि दीपक, जब मंगल की बात आई थी तभी अंत दीपक यानी अभी अंत में लिखे, नमो लोए सव साहूणम, साहूणम के आगे लोए सव लिख दिया, यानी लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार। परंतु जो पांचवे पद में लिखा है वो पहले से सभी में लगा लेना, एप्लीकेबल टू ऑल, यानी नमो लोए सव अरियंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, नमो लोए सव आयरियाणम, नमो लोए सव उवज्जायाणम और नमो लोए सव साहूणम। तो लोए सव ये जो शब्द है वो हर जगह लगाना, लगाया तो एक ही जगह, अंत में लगाया, शुरू से समझ लेना, इसको कहते हैं अंत दीपक। शुरू में लगाते हैं हम सर्वश्री लिखते हैं और फिर सब नामों की टोटल लिखते हैं, तो वो हो गया आदि दीपक। कहीं मध्य में लिख देंगे कोई विशेषण सबके लिए, तो हो जाएगा मध्य दीपक। तो ये जो है यहाँ वो अंत दीपक। अतः संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले त्रिकालवर्ती अरहंत आदि देवताओं को, देवता यहाँ सभी को, पांचों को यहाँ देवता कहा है, और उनको देवता क्यों कहा उसकी भी बात आई थी पहले, आदि देवताओं को नमस्कार करने के लिए उन्हें प्रत्येक नमस्कारात्मक पद के साथ जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण क्षेत्र में यानी लोए सव और त्रिकालवर्ती ये दोनों शब्द लगाना, यानी नमो लोए त्रिकालवर्ती सव अरियंताणम, त्रिकालवर्ते सव अरियंताणम, ऐसा लगाना।
देखिए यहाँ पर एक बात बताई है कि आचार्य उपाध्याय और साधुओं को भी देव कहा है, ख्याल में है? तो कई लोग जब स्वामी जी कहते थे कुंद कुंद आचार्य देव ने ऐसा कहा है, तो उनके ऊपर जिनको इस बात का पता नहीं वो ऑब्जेक्शन लेते थे, अरे वो तो अभी आचार्य स्टेट में है, तो उनको पद में है, तो आप उनको देव क्यों कहते हैं? तो यहाँ तो उसी की सिद्धि कर रहे हैं, ये पांचों ही पद है वह देव के पद है। देवता लिखा ना, देवता का अर्थ ही देव, हिंदी में देवता कहते हैं। अब उसकी बात आगे आने वाली है,
शंका उसी पर पूछेंगे, आगे वही शंका पूछी।
हाँ। नहीं अभी आएगी, बहुत सारी बातें आएगी,
अभी शंका वही पूछ रहे हैं।
क्योंकि अपने मन में जो जो शंका आएगी वो वीरसेन आचार्य जानते थे, उन्होंने पहले से लिख दिया है, खाली हमें में धीरज रहना चाहिए आगे बात बढ़ने की। हाँ? चलो
क्या कहते, शंका पूछ लिए। जिन्होंने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है ऐसे अरिहंत और सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार करना योग्य है, किंतु आचार्यादि तीन परमेश्वरियों ने आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं किया है यानी संपूर्ण रीति से, इसलिए उनमें देवपना नहीं आ सकता। प्रश्न पूछा ना उन्होंने, क्योंकि ऊपर लिखा है सभी देवताओं को नमस्कार करना, अतएव उन्हें नमस्कार करना योग्य नहीं है। उसका समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने अपने भेदों से अनंत भेद रूप रत्नत्रय ही देव है, अतएव रत्नत्रय से युक्त जीव भी देव है। क्या कहते हैं, अपने अपने भेदों से ने रत्नत्रय प्राप्त कर लिया, तो रत्नत्रय की प्राप्ति तो चौथे गुणस्थान में ही हो गई, यानी मोक्ष मार्ग शुरू हुआ और उसकी पूर्णता आगे चलकर होगी, अरिहंतों में हो जाएगी उसकी, बराबर। तो उसके अनंत भेद है, वितरक्त के इंक्रीजिंग ऐसे अलग 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 बहुत सारे स्थान हो जाएंगे, क्योंकि अनंत वो अविभाग प्रतिच्छेद उसमें पाए जाते हैं, तो उसमें अपेक्षा उसमें कितने सारे भेद हो जाएंगे। तो उसमें अपने अपने भेदों से अनंत भेद रूप रत्नत्रय ही देव है, तो रत्नत्रय को ही यहाँ देव कहा है, अतएव रत्नत्रय से युक्त जीव भी देव है। वो मंगलाचरण में आता है ना, मोक्ष मार्ग के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, मंगलमय मंगल कर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताही जाते भय अरिहंतादि महान। वीतराग विज्ञानता के कारण अरिहंतादि, आदि में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सभी महान हुए हैं। तो यहाँ भी वही बात है कि रत्नत्रय के कारण ये सभी महान हैं। अभी चौथे पांचवे वाले को रत्नत्रय वो तो बहुत अल्प है, इसलिए यहाँ मुनियों की अपेक्षा से, मुनियों को तो चलते फिरते सिद्ध भी कहा है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में बहुत आगे आरूढ़ होकर बहुत देव यानी परमात्मा पद के बहुत नजदीक पहुंच गए वे, तो उनमें रत्नत्रय की मुख्यता है। क्या कहते हैं देखो, कि रत्नत्रय से युक्त जीव भी देव है, अन्यथा यदि रत्नत्रय की अपेक्षा देवपना न माना जाए तो संपूर्ण जीवों को देवपना प्राप्त होने की आपत्ति आ जाएगी। यदि रत्नत्रय जिनमें है वे देव है ऐसा अगर नहीं कहेंगे तो सभी जीव देव हो जाएंगे। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि आचार्यादिक भी, अभी आचार्यादिक कहा यानी आचार्य उपाध्याय और साधु, रत्नत्रय के यथा योग्य धारक होने से देव है। यथा योग्य यानी जो तीन कषाय के अभाव रूप वितरकता है वहां जितना उनका रत्नत्रय है उसकी यथा योग्य अपेक्षा से उनको भी देव कहा है, क्योंकि अरिहंतादिक से आचार्यादिक में रत्नत्रय के सद्भाव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, उनमें भी रत्नत्रय का सद्भाव है और इनमें भी रत्नत्रय का सद्भाव है, तो रत्नत्रय की सद्भाव की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। अर्थात जिस तरह अरिहंत और सिद्धों के रत्नत्रय पाया जाता है उसी प्रकार आचार्यादिक के भी रत्नत्रय का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए आंशिक रत्नत्रय की अपेक्षा इनमें भी देवपना बन जाता है, इनमें भी आंशिक रत्नत्रयपना है, जैसे उनमें पूर्ण है इनमें आंशिक है, तो इनको भी देव हम कहते हैं और उनको नमस्कार आदि सभी वैसा ही इनके साथ व्यवहार आचार होता है। आचार्य आदि परमेष्ठियों में स्थित तीन रत्नों का सिद्ध परमेष्ठी में स्थित रत्नों से भी भेद नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, आचार्य में भी जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है और सिद्धों में जो सम्यक ज्ञान चारित्र है उनमें भेद नहीं है। यदि दोनों के रत्नत्रय में सर्वथा भेद मान लिया जावे, उनका रत्नत्रय अलग ही है और आचार्यादिकों का अलग ही है, ऐसा अगर हम मानेंगे तो आचार्यादिक में स्थित रत्नों के अभाव का प्रसंग आएगा, ये उनमें रत्नत्रय है ही नहीं ऐसा मानना पड़ेगा। यदि सिद्धों का रत्नत्रय और आचार्यों का रत्नत्रय अलग क्वालिटी का होगा, सर्वथा की बात की ना, तो ये उसको हम अगर रत्नत्रय ही नहीं मानना पड़ेगा हमको, यदि वो अलग क्वालिटी का होगा। फर्क क्या है उसमें, एक देशता का है, अंश है वो, थोड़ा है। अर्थात जब आचार्य देख के रत्नत्रय सिद्ध परमात्मा के रत्नत्रय से भिन्न सिद्ध हो जावेंगे तो आचार्यादिक के रत्न ही नहीं कहलावेंगे। जैसे किसी के पास सच्चा हीरा है और हमारे पास झूठा है, तो ये दोनों हीरों में भेद है। तो भेद है वो सच्चा है तो हमारा झूठा सिद्ध हो ही गया है ना, तो उनके पास बड़ा है हमारे पास छोटा है, परंतु वो भी हीरा है हमारा भी हीरा है, तो उसी क्वालिटी है, उसी जाति का है, तो इसमें वो सर्वथा भेद नहीं है, ऐसी बात यहाँ सिद्ध करें। आचार्यादिक और सिद्ध परमेष्ठी के सम्यक दर्शनादिक रत्नों में कारण कार्यपने से भी भेद नहीं है, क्योंकि ये पूरा पढ़ते फिर इसका अर्थ करेंगे। आचार्यादिक में स्थित रत्नों के अवयवों के रहने पर ही तिरोहित अर्थात कर्मपटलों के कारण पर्याय रूप से अप्रकट दूसरे रत्न अवयवों का अपने आवरण कर्म के अभाव हो जाने के कारण आविर्भाव पाया जाता है। क्या कहते हैं, आचार्यादिक जो सम्यक दर्शनादिक रत्न है और सिद्ध परमेष्ठी के जो सम्यक दर्शनादिक रत्न है उनमें कारण कार्यपने से कोई भेद नहीं है। क्यों नहीं है, तो जो आचार्यों के जो रत्नों के अवयव है उनमें जो रत्नत्रय प्रकट है वहां कुछ रत्नत्रय अप्रकट है, तीन कषाय का अभाव रूप वितरकता है परंतु वहां संज्वलन का अभी कषाय बाकी है, बराबर, यानी वो रत्नत्रय की पूर्णता नहीं हुई है वहां, तो जो उर्वरित है वो तिरोहित है, उनका अप्रकट है, तिरोहित है ने ढका हुआ, और आविर्भूत यानी प्रकट हुआ। आविर्भाव और तिरोभाव ऐसा शब्द आता है समय सार में भी आता है, आविर्भाव होना और तिरोभाव होना, आविर्भाव होना यानी प्रकट होना, तिरोभाव होना यानी ढकना। क्या कहते हैं कि आचार्यादिक में स्थित रत्नों के अवयवों के अवयव कहा, रत्नों के अवयव कहा, पार्ट है ना, वो पार्शल है, एक देश है, तो एक देश रत्नत्रय रहने पर ही तिरोहित यानी क्या, अप्रकट। किसके कारण, अभी उसमें निमित्त कारण भी बताया कि कर्म पटलों के कारण पर्याय रूप से अप्रकट, शक्ति रूप की बात नहीं है, कर्म का वहां सद्भाव है और इसलिए अभी पूर्ण प्रकट नहीं हुए, तो कैसे है, तिरोहित है, तिरोहित है ने अप्रकट है। ऐसे कौन है, दूसरे रत्न अवयवों का आचार्यों में कुछ प्रकट है रत्नत्रय, हाँ, आविर्भाव ने जिस वाक्य में जैसा उसका अर्थ हो वैसा लेना, आविर्भाव होना है ने प्रकट होना। देखो क्या कहते हैं, आचार्यों में इतना रत्नत्रय प्रकट है और ये टोटल इतनी हमारे में है, पूरी सामर्थ्य तो इतनी है, इतना प्रकट है और इतना अप्रकट है, ये अवयव प्रकट है और ये अवयव अप्रकट है, ये अवयव अप्रकट क्यों है, वहां कर्मों का पटल है। अभी यहां निमित्त की अपेक्षा बात की, वहां कर्मों का निमित्त है तो क्या कहेंगे, इतना प्रकट है और इतना तिरोभूत है, बराबर। अब ये जो तिरोभूत है वो दूसरे रत्न अवयवों का ये दूसरे रत्न अवयव नहीं है, जो तिरोभित है, जो तिरोभूत है, जो प्रकट नहीं है, ऐसे दूसरे रत्न अवयव, ये है जो प्रकट रत्न अवयव। हमने दो भेद किए, ये भी, इसको भी अवयव कहेंगे, और जो अप्रकट है वो भी, अभी थोड़ा ही अप्रकट है वो भी अवयव कहेंगे, ये पूरा मिलकर हम संपूर्ण कहेंगे। तो जितना प्रकट है वो, जितना अप्रकट है ना, उसका प्रकट कब होगा, कि ये जो आवरण कर्मों का अभाव होने पर इसका आविर्भाव हो जाएगा। ये आविर्भूत है, ये ऑलरेडी प्रकट है, ये अप्रकट है, यहाँ आवरण कर्म है, आवरण कर्म दूर होने पर इसका भी आविर्भाव हो जाएगा, बराबर। तो क्या कहते हैं नीचे से दूसरी लाइन, दूसरे रत्न अवयवों का अपने आवरण कर्म के अभाव हो जाने के कारण आविर्भाव पाया जाता है। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं उसको आगे पढ़ेंगे, फिर इसकी फिर चर्चा करेंगे, अगर नहीं समझे तो। अर्थात जैसे जैसे कर्म पटलों का अभाव हो जाता है, होता जाता है, वैसे ही अप्रकट रत्नों के शेष अवयव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। पहले तो इतना मुनियों को प्रकट है, ऊपर का अप्रकट है, जैसे जैसे आगे आगे वाले कर्म चले जाएंगे, उनका अभाव होगा, वैसा वैसा वो अप्रकट है वो भी प्रकट हो जाएगा। इसलिए उनमें कारण कार्यपना भी नहीं बन सकता। क्या कहते हैं, कारण कार्यपने से भेद नहीं है, यानी उनकी क्वालिटी एक ही है, ये कारण है वो कार्य, ऐसी बात नहीं है। जितनी अंतरंग स्थिरता होगी, अब यहाँ तो कर्मों की निमित्त की भाषा में बताया कि जितना कर्म पटल दूर होगा उतना ये जो रिमेनिंग जो रत्नत्र है वो प्रकट होते जाएंगे। इसलिए आगे फिर पढ़ेंगे, इसलिए उनमें कारण कार्यपना भी नहीं बन सकता। इसके कारण ये प्रकट हुआ ऐसा नहीं है, क्या ले? इसी प्रकार आचार्यादिक और सिद्धों में परोक्ष और प्रत्यक्ष जन्य भी भेद नहीं है, क्योंकि वस्तु परिच्छित्ति की अपेक्षा दोनों एक है। कोई ऐसा कहेंगे कि सिद्धों में तो सब परोक्ष प्रत्यक्ष है और आचार्यादिकों में परोक्ष है, आचार्यादिक का ज्ञान तो परोक्ष है और सिद्धों का तो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, ऐसा अधिक कहेंगे कोई तो वो भी बात नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? यह रत्नत्रय की, समय दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है, तो जो अंतरंग में स्थिरता है वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वहां वो परोक्ष की अपेक्षा वहां भी नहीं लगेगी। इसलिए वस्तु परिच्छित्य ने वस्तु का ज्ञान, परिच्छित्य ने परिज्ञान यानी वस्तु का जो ज्ञान है वहां समय, कौन सी वस्तु की बात यहाँ हो रही है? आत्म वस्तु की, अपने आत्मा को जानते हैं तो वो तो प्रत्यक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष चल रहा है वहां। ये परोक्षपना का कब कहेंगे? तो इंद्रियों के द्वारा जब बाह्य चीजें जानते हैं तब हम उसको कहेंगे मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष है, परंतु जब आत्मा को जानते हैं तो उसमें कौन सा इंद्रिय निमित्त है? कोई नहीं, वहां कोई बीच वाला, कोई इंटरप्रिटर की कोई जरूरत नहीं है क्या? अपने आप से बात करनी है तो कौन सा इंटरप्रिटर लाना? केवल
यहाँ देखिए, ये बात कह रहे हैं कि वस्तु परिचित्ति यानी वस्तु के ज्ञान की अपेक्षा दोनों एक है, यानी सिद्ध भगवान जो अपने आत्मा के बारे में जान रहे हैं वैसे ही आचार्य भी जान रहे हैं, और वो आत्मा संबंधी जो ज्ञान है वह तो बिल्कुल एक जैसा है, उनमें भेद नहीं है। ख्याल में? तो ऐसा समझा रहे हैं कि जैसा हम दोनों के बारे में सोचा जाए तो दोनों का स्वज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष ही है, उसमें परोक्ष एक का है और एक का प्रत्यक्ष है, ऐसा भेद नहीं है, यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं। आगे
देखो, वस्तु वस्तु परिचिति ने आत्मा, आत्मा
वस्तु संबंधी ज्ञान एक है,
आत्म ज्ञान है सारे ना।
वस्तु यानी स्व वस्तु यानी निज आत्मा, वो ज्ञान में कोई फर्क नहीं, दोनों ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव भी जो ज्ञान का अपना स्व का अनुभव करेगा तो वह अनुभव प्रत्यक्ष है, वह अनुभव यानी ज्ञान ही है ना, तो ज्ञान प्रत्यक्ष है। ये क्यों समझाना चाहते हैं, जब जब यह जीव का उपयोग अभी छद्मस्थावस्था में, यानी अभी हम समझ लेते हैं मिथ्या दृष्टि है उसकी बात करेंगे, तो जब पर को जानता है तो वो पर को जानने वाला ज्ञान इसको परोक्ष ज्ञान कहा जाएगा, क्योंकि इसमें पांच इंद्रिया और मन भी निमित्त है। लेकिन जब पंचेंद्रिय सौधनी जीव अपने स्वरूप का अनुभव करेगा तो वो अनुभव वाला जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसलिए ज्ञान की अपेक्षा यानी वस्तु के परिपूर्ण ज्ञान की अपेक्षा दोनों में कोई भेद नहीं है, यही बात समझा रहे हैं।
तीसरी लाइन, केवल एक ज्ञान के अवस्था भेद से भेद नहीं हो सकता। ज्ञान में भेद नहीं, ये अल्प ज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी, तो ऐसे अवस्था भेद होने के कारण वो ज्ञान में कोई भेद नहीं है, उनका भी जानना ही है और इनका भी जानना ही है। जानना 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 इसमें कोई भेद नहीं है। यदि ज्ञान में उपाधिकृत अवस्था भेद से भेद माना जावे, उपाधिकृत यानी वहाँ अभी यहाँ ज्ञानावरण कर्म है उसकी उपाधि है और उसके कारण यहाँ जानना जो है वो क्षोभम ज्ञान चल रहा है, उनका अल्प ज्ञान चल रहा है, ज्ञान में कोई लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस है, परंतु जो जान रहे वो तो ज्ञान ही है, ख्याल है ना, उसमें कोई भेद नहीं है। यदि ये उपाधिकृत से भेद, अगर अल्प ज्ञान और पूरा ज्ञान ऐसे उसमें अगर हम कोई डिफरेंस करते हैं तो निर्मल और मलिन दशा को प्राप्त दर्पण में भी भेद हो जाएगा। एक स्वच्छ दर्पण है और दूसरा दर्पण है उसके ऊपर धूली पड़ गई है, तो क्या दर्पण दर्पण में भेद है क्या? वो भी दर्पण है और ये भी दर्पण है, तो दर्पण में भेद नहीं हो सकता है। इसी प्रकार आचार्यादिक और सिद्धों के रत्नों में अवयव और अवयवी जन्य भी भेद नहीं है, वहां भी वो धूली वाला भी दर्पण परिपूर्ण दर्पण है और अभी स्वच्छ दर्पण भी परिपूर्ण दर्पण है। ऐसे वो भी अल्प ज्ञानी भी ज्ञान उनका, पहले तो हमने ये सिद्ध किया था केवल ज्ञान का अंश है करके, ख्याल है ना, तो अवयव और अवयवी जन्य भी भेद नहीं है, क्योंकि अवयव अवयवी से सर्वथा अलग नहीं रहते। सर्वथा शब्द लाला यानी वो अलग ही प्रकार का होगा और जिसका वो अवयव है वो अलग ही क्वालिटी का होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये नए चक्र में बात उठाई है, समुद्र और असमुद्र की बात, जैसे वहां क्या प्रश्न पूछा, ये प्रमाण है और नए तो प्रमाण के भेद है, तो वो प्रमाण के भेद है तो अंश है, तो वो प्रमाण है कि अप्रमाण है, सामने वाला शिष्य पकड़ना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने दृष्टि, अभी हम प्रमाण नहीं की बात छोड़ेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं चाहते। वहां प्रश्न पूछा, समुद्र का जो एक छोटा अंश है, हमने एक घड़े में समुद्र का पानी लाया, वो समुद्र है कि असमुद्र है? तो आप क्या कहेंगे? असमुद्र है, बराबर। सामने वाला क्या प्रश्न पूछता है, फिर वो पकड़ना चाहता है, यदि हम असमुद्र कहेंगे तो हमने सारे ही इतने घड़े हमने इकट्ठे किए समुद्र के ऐसे अलग अलग करके कि उसका समुद्र बन जाए, तो सभी असमुद्रों का मिलकर एक समुद्र हो जाएगा, तो वो दोष आता है ना उसमें। तो समुद्र का अंश पूरा समुद्र नहीं है, परंतु वो समुद्र का ही अंश है, उस अपेक्षा से हम उसकी क्वालिटी वैसी है सब पूरी, यानी वो सर्वथा असमुद्र नहीं कह सकते हम उसको, सर्वथा शब्द लगाना है, ख्याल है? वैसे यहाँ क्या कहते हैं कि वो कोई सर्वथा अलग ही प्रकार का हो ऐसा नहीं है, वो भी ज्ञान ही है और ये भी ज्ञान है, अल्पता अल्पज्ञता और पूर्णता उसकी अपेक्षा भले भेद हो परंतु वो सर्वथा कोई अलग ही हो ऐसी बात नहीं है। तो ज्ञान तो जानने का ही कार्य करते हैं, हम भी जानते हैं और सिद्ध भगवान भी जानते हैं, वो कितना किसको कितने प्रमाण में जानते उसकी बात छोड़ दो। अवयव यानी कोई अंग, जैसे ये उंगली है, उंगली है, ये अवयव हुआ हमारा, एक अवयव हुआ, अवयवी यानी संपूर्ण अवयवों का जो समूह है उसको अवयवी कहेंगे। अभी हम शरीर में तो क्या हर एक अलग अलग अवयव है ना उसके, हाँ हाथ पैर है, या हम अवयव कहते हैं ये क्या, ये स्प्लीन है, ये लिवर है, ये किडनी है, ये हार्ट है, ये अवयव हुए हमारे शरीर के अलग अलग अवयव, अंग जिसको कहते हैं। फिर शंकाकार शंका पूछता है, संपूर्ण रत्न अर्थात पूर्णता को प्राप्त रत्नत्रय ही देव है, उसी को देव कहना उचित है, रत्नों का एक देश देव नहीं हो सकता। एक देश यानी पार्ट, मुनियों में, हाँ मुनियों में एक देश यानी पार्शल वितरकता है, पार्शल रत्नत्रय है, तो उनको देव कहना नहीं चाहिए, ऐसा अभी भी उनका कहना है। उसका समाधान, ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि रत्नों के एक देश में देवपना का अभाव होने पर रत्नों की समग्रता में भी देवपना नहीं बन सकता। अभी जो हमने समुद्र का उदाहरण देखा था, यदि समुद्र के एक अंश को हम असमुद्र कहेंगे तो अनेक अंशों का मिलकर जब समुद्र बन जाएगा तो वो भी समुद्रपना को प्राप्त नहीं होगा। तो रत्नों को जो एक देश है, एक देश वितरागता को तो हम अगर देवपना स्वीकार नहीं करते हैं तो संपूर्ण वितरागता भी वो देवपना को प्राप्त नहीं होगी। ये न्याय ख्याल में आते ना, यहाँ तो सभी न्याय की भाषा चलेगी भी। यह चौथे वाले की बात ही नहीं की, क्योंकि ये तो उसमें तो बहुत अल्प प्रमाण में, यह मुख्यतः मुनियों से ही शुरू किया यहाँ से, ये तो चौथे वाला नहीं, नगण्य जैसे उसको। हाँ हाँ बिल्कुल रत्नत्रय, उसकी अपेक्षा वहां भी लगा सकते, उनमें भी यथा योग्य वितरकता है, वे भी रत्न है और उनकी भी क्वालिटी है, तो चौथे की और सिद्धों की समान है।
देखो इन्होंने क्या बताया कि जिनके पास रत्नत्रय है वो जीव भी देव है, ऐसा कहा है। एक अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जीव है उसको भी मुक्त है कहा है, दृष्टि मुक्त है वह, ख्याल में अपेक्षा समझना। यहाँ तो बात अभी तो आचार्यों की यानी साधुओं की चलेगी, मुनियों की चलेगी, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन पांच परमेष्ठियों में चल रही है, देव और मुनि। तो इनका तो ऐसा, शंकाकार का तो बारंबार ऐसा ही कहना है कि आप आचार्य उपाध्याय और साधुओं को क्यों देव कहते हो, उनमें देवपना नहीं है, ये वो सिद्ध करना चाहते हैं शंकाकार, और उनको उत्तर देके बता रहे ने उनमें भी देवपना है। बस ये इन दोनों की बात चल रही है, आपके मन में सम्यक दृष्टि की बात आ रही है, कोई बात नहीं, उनमें भी सम्यक तो है, वो सम्यक जो सम्यक ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान में और केवली के ज्ञान में कोई अंतर नहीं, सर्वथा भेद नहीं और सर्वथा अभेद भी नहीं है, कथनचित भेद और कथनचित भेद नहीं है।
अब मुनियों ने लिखी है, रचना की है, तो जो मुनि है, स्वयं मुनि है, वो आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्कार करें। अब पंडित टोडरमल जी ने जब शुरू किया था लिखना तो इनको तो नमस्कार किया ही किया, और फिर यथा योग्य आगे के ने पंचम गुणस्थानवर्तियों को और उनको भी नमस्कार किया, उन्होंने उनका भी यथा योग्य विनय ऐसा लिख दिया वहाँ स्टार्टिंग में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के शुरू में। तो जो जिस भूमिका में वो अपने ऊपर के भूमिकाओं को वंदन करेगा, ख्याल है ना। देखो अर्थात जो कार्य जिसके एक देश में नहीं देखा जाता है वह उसकी समग्रता में कहां से आ सकता है। अन्य मति जो कहते हैं ये हम सब ईश्वर के अंश है और हम दुखी है, यदि एक अंश दुखी है तो पूरा ईश्वर कितना दुखी होगा, क्योंकि हम सभी अंश इतने दुखी हैं, है ना। तो जो बात उसके अंश में नहीं हो सकती है वो उसकी पूर्णता में नहीं हो सकती है। एक एक इसमें अभी हमको बहुत अच्छे न्याय सुनने को मिलेंगे। फिर शंका, हाँ शंका पूछते, आचार्यादिक में स्थित रत्नत्रय समस्त कर्मों के क्षय करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके रत्न एक देश है। क्या कहते हैं, आचार्यादि के रत्न एक देश है तो संपूर्ण कर्मों का नाश करने में वो कार्यकारी नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। उसका उत्तर, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार पलाल राशि का दाह रूप, पलाल राशि यानी वो गवत, हाँ घास, घास के गट्ठे रखते हैं ना बड़े बड़े, मराठी में गवत कहते हैं, गवताची गंजी। हाँ, यानी क्या होता है, फील्ड में खेतों में ये तो सूख जाता है ना, गवत निकालते हैं और सूख जाता है, घास घास सूख जाता है, तो उसकी तप्पी कर ऐसी राशि बनाकर, घास की ऐसी राशि बनाते हैं, तो उसको जलाने के लिए कितना अग्नि चाहिए, एक चिंगारी काफी है, बराबर। यानी वो तो आग तो बड़ी लगेगी जब वो यानी जलाएंगे, वो तो बहुत बड़ी आग हो जाएगी, परंतु उसको स्टार्ट करने के लिए कितना चाहिए, आग कितनी चाहिए, इतनी बड़ी चाहिए, तो एक चिंगारी काफी है। वैसे क्या कहते हैं कि जिस प्रकार पलाल राशि का दाह रूप अग्नि समूह का कार्य, यानी बड़ी आग जो लगेगी उसका कार्य अग्नि के एक कण से भी देखा जाता है, यानी उस इतनी बड़ी घास की वो राशि है, उसको जलाने के लिए एक हाँ चकमक का पत्थर कहो या एक चिंगारी कहो काफी है। क्या पलाल यानी घास, पलाल राशि यानी घास की राशि, रास कहते हम, बंडल यानी वो खेतों में ऐसा रखते रचना करते ना ऐसे बड़े बड़े। हाँ उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए, ये तो ध्यान अग्नि कहा, यहाँ ध्यान अग्नि के द्वारा, यहाँ जो जितना रत्नत्रय है उसी के द्वारा, अब जो वहाँ कर्म तो कितने पड़े हैं, अनंत अनंत कर्म अंदर पड़े हैं, तो उनको जलाने में वो समर्थ है। इसलिए आचार्य अधिक भी देव है यह बात निश्चित हो जाती है। इन शंकाकार बार बार ये कहता है कि उनको देव नहीं कहना चाहिए, उनको नमस्कार नहीं करना चाहिए, उनके रत्नत्रय कर्मों को जलाने में समर्थ नहीं है, ऐसी ऐसी बातें, तो उन सब उनकी शंकाओं का यहाँ निराकरण करते हैं। अब फिर शंका, सर्व प्रकार से कर्म लेप से रहित सिद्ध परमेष्टि के विद्यमान रहते हुए अघातिया कर्मों के लेप से युक्त अरिहंतों को आदि में नमस्कार क्यों किया जाता है? पहले सिद्धों को नमस्कार करना चाहिए था, अरिहंतों को पहले क्यों नमस्कार किया, नमो अरिहंतानम पहले क्यों कहा, यानी इसको कहीं ना कहीं कुछ नुक्स निकालनी है ना, शंका इसे उठाते। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अधिक गुण वाले सिद्धों में श्रद्धा की अधिकता के कारण अरिहंत परमेष्टि है। क्या कहते हैं, सिद्धों में हमारी श्रद्धा हुई तो सिद्धों का स्वरूप किसने बताया, अरिहंतों ने बताया, तो सिद्धों में हमें जो सबसे अधिक श्रद्धा हुई है उसके कारणभूत कौन है, तो उसके कारणभूत तो अरिहंत ही है, क्योंकि अरिहंतों के उपदेश के द्वारा ही हमें मोक्ष मार्ग का भी पता चला और सिद्धों के स्वरूप का भी पता चला। यदि अरिहंतों की बीच वाली स्टेप निकाल दो, मोक्ष मार्ग में आ गया जीव और बिना उपदेश का मोक्ष चला गया, हाँ ऐसा जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि आने के लिए उसको उपदेश की जरूरत है।
देखो बीच में स्टेप्स आप निकालना चाहते हैं, जब तक मुनि वो होगा कैसा, उसको कैसा पता लगेगा कि भाई ऐसा ऐसा हमें आगे चलना है करके,
उसको समयदर्शन ही नहीं होगा, हाँ ना, देशना के बिना,
यानी पूरा मोक्ष मार्ग उड़ जाएगा और कुछ दिन के बाद मोक्ष भी
नहीं रहेगा। अर्थात अरिहंत परमेष्टि के निमित्त से ही अधिक गुण वाले सिद्धों में सबसे अधिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप हमें अरिहंतों के उपदेश से, तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनि से ही तो पता चला हमें उनका। अथवा यदि अरिहंत परमेष्टि न होते तो हम लोगों को आप्त आगम और पदार्थ का परिज्ञान नहीं हो सकता था। आप तो यानी जिनेन्द्र भगवान का पता नहीं चलता, आगम यानी जो वस्तु स्वरूप का कथन किया है उन्होंने तीर्थंकरों में उसका पता नहीं चलता, और पदार्थ यानी जो वस्तु स्वरूप है उसका भी परिज्ञान यानी सर्वांगीण ज्ञान नहीं हो सकता था, सभी ओर से उसका ज्ञान भी हमें पता नहीं चलता। किंतु अरिहंत परमेष्टि के प्रसाद से हमें इस बोध की प्राप्ति हुई है। ये प्रसाद यानी वो कोई अन्य मंदिर प्रसाद बांटते हैं ना, ये तो भगवान को थोड़ा इतना देना बाकी सब प्रसाद से अपने स्वाह कर जाना, ऐसी बात नहीं, वो प्रसाद नहीं। हाँ जब अरिहंत भगवान ने जो उपदेश दिया उसको जब हम अंगीकार करेंगे, उसको धारण करेंगे, उस रूप परिणमन करेंगे, तो हम कहेंगे ये अरिहंत भगवान के प्रसाद से हुआ है। वो किसी पर प्रसन्न नहीं होते, ना किसी को कुछ प्रसाद रूप से देते हैं। वो सिद्ध की पूजा में आता है ना, प्रसिद्ध प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह, वो प्रसिद्ध है ने प्रसन्न होते, प्रसन्न होते ने क्या होते, ये अपने जैसे प्रसन्नता नहीं है, ये हर्ष हो जाना वो प्रसन्नता वहां बात नहीं है। इसलिए उपकार की अपेक्षा भी आदि में अरिहंतों को नमस्कार किया जाता है। कोई हमें उपकार करे, कोई वस्तु का स्वरूप बताए, तो हमें उनके प्रति अहोभाव आता है। अरिहंतों ने ये मूल मार्ग हमें बताया, तो पहले में पहले अरिहंतों को हम याद करते हैं, क्योंकि उनके कारण हमें इस बात का पता चला। ये अन्य मतियों में भी ऐसा है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, हाँ बलिहारी गुरुदेव की जिसने दियो दियो बताया, गोविंद दियो बताया, तो उनका स्वरूप इसने बताया।
देखो यहाँ पर ये बात बताते हैं, ये तो सटायरिकल बात है। डॉक्टर हुकुमचंद भारिल बोलते हैं क्या करे, ये जैन दर्शन जो है वो वाणिया के हाथ में आके पड़ा है, और वाणिया क्या करता है, जब तक लाभ नहीं होता है अपना किसी बात का, तो जब तक झुकेगा नहीं। तो अरिहंतों से लाभ हो गया, ये सारी अभी जो बात बताएं आपता आगम आदि, तो फिर उसको नमस्कार करेगा, यानी हमारे ऊपर उपकार किया, भाई तुमने ये बात बताई तो पहले तुझे नमस्कार, तो इसलिए अरिहंतों को पहले नमस्कार किया है। वही बात इन्होंने अच्छी भाषा में कहा है, क्या कहा है, उपकार की अपेक्षा भी आदि में अरिहंतों को नमस्कार किया है, और वो तो वास्तविकता है, उसमें कोई मतलब नई बात नहीं है।
आगम में कोई कथा आती है, आपको शायद नाम पता, वो कुत्ते को नमस्कार मंत्र सुनाए, नमोकार मंत्र जीवन रखे, हाँ तो वो तो देव हो गया। अब देव हुआ वो फिर दर्शन करने के लिए आया था नीचे, तो जिसने उनको सुनाया था नमोकार मंत्र उनको पहले नमस्कार किया और बाद में गुरु को नमस्कार किया, मुनियों को। तो ऐसा क्यों, क्योंकि साधारण आदमी को पहले कौन नमस्कार किया, मुनि सामने खड़े हो तो उसको क्यों करेगा। तो इन्होंने मुझे ऐसा सुनाया था और उनके वो कुत्ते का जो वो देव हुआ और वो उनके उपकार स्मरण हुआ उसको कि इनके कारण मुझे ये पर्याय प्राप्त होगी, तो ऐसा होता है। यदि कोई कहे इस प्रकार आदि में अरिहंतों को नमस्कार करना तो पक्षपात है। अभी अपनी बात नहीं छोड़ना चाहता जल्दी, शंकाकार ऐसा है ना। इस पर आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसा पक्षपात दोषोत्पादक नहीं है, किंतु दोषोत्पादक यानी दोष को उत्पन्न करने वाला, ये संस्कृत मिश्रित भाषा है ना, यानी ऐसा पक्षपात होना कोई दोष नहीं है, किंतु शुभ पक्ष में रहने से वह कल्याण का ही कारण है। यानी हम पक्षपात जो कहते हैं पार्शियलिटी, तो ये क्रिकेट मैच में जो पार्शियलिटी होती है अंपायर में, वह तो राग द्वेष के कारण होती है, परंतु यहाँ तो हम अरिहंतों के प्रति पहले नमस्कार करते हैं, तो वहां तो हमें उनके प्रति अहोभाव है, और उनमें हम ये सिद्ध और ये अरिहंत ऐसा डिफरेंस, उसके लिए हम उसमें पक्षपात नहीं कर रहे, ख्याल है ना, कि जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप हमें उनके द्वारा प्राप्त हुआ है, तो हमें तो सिद्धों के प्रति भी बहुत बहुमान है, फिर भी हमने अरिहंतों को नमस्कार किया है, वो ऐसा वाला पक्षपात नहीं, वो राग द्वेष वाला। यहाँ जो पक्षपात हो रहा है वो शुभ पक्ष में, एक ही पक्ष में दोनों है, अरिहंत और सिद्धों को हमने एक ही पक्ष में रखकर पहले इनको नमस्कार किया है, उनमें ये अच्छे है वो बुरे ऐसी बात नहीं की है, है ना। तो ये पक्ष कोई पक्षपात दोषोत्पादक नहीं है, और शुभ पक्ष में रहने से वह कल्याण का ही कारण है, तथा द्वैत को गौण करके, द्वैत ने दोपना उसको गौण कर देंगे, अद्वैत के प्रधानता से किए गए नमस्कार में द्वैत मूलक पक्षपात बन भी तो नहीं सकता। यह अरिहंत और सिद्धों में जो द्वैतपना किया, या अपने में ही जो द्वैतपना कि मैं नमस्कार करने वाला और ये नमस्कार करने योग्य, उसको द्वैत नमस्कार कहेंगे। अरिहंतों को हम नमस्कार कर रहे हैं तो मैं भिन्न अरिहंत भिन्न, और इसमें ये द्वैत है, और अद्वैत नमस्कार यानी जिसको समय सार में वो सच्ची भक्ति कही है, निश्चय स्तुति कहा है, निश्चय स्तुति या निश्चय भक्ति कहो, तो अपने में ही लीन हो जाना वो निश्चय स्तुति का। तो जहाँ अद्वैत की प्रधानता से किए गए नमस्कार में द्वैत मूलक पक्षपात बन भी तो नहीं सकता, यहाँ द्वैत यानी सिद्ध और अरिहंतों में हमने कोई द्वैत नहीं किया है, जिसकी बात है यानी उनमें भेद डाला और फिर एक को मुख्य किया, ऐसी बात यहाँ नहीं हो रही है। द्वैत यानी दोपना, देखो इसी का विशेषार्थ कर रहे नीचे। पक्षपात वही संभव है यानी वहां पर ही संभव है जहाँ दो वस्तुओं में से किसी एक की ओर करना, उसको किसी एक की ओर अधिक आकर्षण होता है। परंतु यहाँ परमेष्ठियों को नमस्कार करने में दृष्टि प्रधानतया गुणों की ओर रहती है, हमारी दृष्टि तो उनके गुणों की ओर है, अवस्था भेद की प्रधानता नहीं है। ये अरिहंत अवस्था है, ये सिद्ध अवस्था, ऐसे नहीं, उनके गुणों के प्रति हमको वहाँ अधिकता है, अपनी दृष्टि उनके गुणों पर है, इसलिए यहाँ पक्षपात किसी प्रकार भी संभव नहीं है। अथवा आप्त की श्रद्धा से ही, आप्त किसको कहना मालूम है? अरिहंतों को, सिद्धों को आप्त नहीं कहा है क्योंकि हमें ये मोक्ष मार्ग का उपदेश उनसे प्राप्त हुआ है ना, इसलिए अरिहंतों को आप्त कहने में आता है। तो आप्त की श्रद्धा से ही आप्त आगम और पदार्थों के विषय में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये प्रवचन सार में भी आता है ना, जो अरिहंत को द्रव्य से गुण से पर्याय रूप से जानता है उसका मोह नष्ट हो जाता है, यानी क्या, उसको सम्य दर्शन होता है, यानी क्या, उसको सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा होती है, उसको सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो जाता है, उसको स्वपर का भेद हो जाता है, भेद ज्ञान हो जाता है और उसमें अपने आत्मा का अनुभव हो जाता है, यानी पदार्थों की श्रद्धा भी उसी को सच्ची हो सकती है। तो आप्त की श्रद्धा यानी अरिहंत की श्रद्धा में ये सभी गर्भित है। तो आपकी श्रद्धा से ही, आप्त की श्रद्धा से ही आप्त आगम और पदार्थों के विषय में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है, क्योंकि यदि हम अरिहंत का स्वरूप नहीं जानते हैं और बस आगम पढ़ेंगे तो कुछ बातें तो जो ठीक है, नहीं नहीं ये तो हो सकती है, कुछ बातें नहीं ये हो ही नहीं सकती, किसने देखा ऐसा। यदि हमें अरिहंत का स्वरूप पता है कि वो कैसे है, निर्दोष और निरावरण है, पूर्ण वितरागी है और सर्वज्ञ है, और उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान से जो जानी बातें हैं वो बताई है और उसके अनुसार आगम की रचना हुई है, तो आगम का एक एक शब्द परम सत्य है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा होगी हमारी और हम उसके अभ्यास करते हैं तो हमें भी आप्त का स्वरूप, आगम का स्वरूप और पदार्थ का स्वरूप, उसमें जो विषय का प्रतिपादन आया है आप्त ने यानी अरिहंतों ने जो बताया है, उसमें दृढ़ श्रद्धा हो जाती है। इस बात के प्रसिद्ध करने के लिए भी आदि में अरिहंतों को नमस्कार किया है, कहा भी है, यानी वो पूरा जो जिनागम है वो हमें आप्त से ही प्राप्त है, तीर्थंकरों के द्वारा ही वो उपदेश हमें प्राप्त है और उन्हीं के उपदेश के अनुसार यहाँ ग्रंथों की आगम की रचना हुई है। उक्तम चलेगा ना, कहाँ गए हम, हाँ कहा भी है। अभी ये नीचे के जो तीन लाइन है उसके बाद 34 नंबर देना है।
अभी हम गाथा पढ़ने जा रहे हैं और उसका अर्थ जो दिया है नीचे, नीचे से पांचवी लाइन जो करना चाहिए लिखा है वहाँ 34 लिख लेना,
34 आंकड़ा लिख देना, वो 34 गाथा का अर्थ है।
हाँ, 34 गाथा का अर्थ है। हाँ पढ़िए,
अब हम पढ़ेंगे। जस्सं तियं धम्मपहं निगच्छे तस्सं तियं वेणय्यं पहुञ्जे सक्कारयेतं शिरपञ्चयेण कायेण वाया मनसा च निश्चम। उक्तम चैने कहीं से उन्होंने उद्धृत की हुई गाथा है। अब इसका अर्थ नीचे देखते, देखो, जिसके समीप धर्म मार्ग प्राप्त करे उसके समीप विनय युक्त होकर प्रवृत्ति करनी चाहिए। क्या कहने चाहते हैं, जैसे हमको कांजी स्वामी से ये प्राप्त हुआ मार्ग, तो उनके प्रति हमें बहुत विनय आदर के भाव आते हैं, तो जिसके समीप धर्म मार्ग प्राप्त करे उसके समीप विनय युक्त होकर प्रवृत्ति करनी चाहिए। गुरु क्या बताते हैं कि गुरु से ज्ञान नहीं होता, अपनी ज्ञान पर्याय से ज्ञान प्रकट होता है, तो क्या शिष्य ऐसा होगा गुरु को ऐसा कहेगा आपने क्या किया, मैंने तो मेरी ज्ञान पर्याय से ज्ञान प्रकट किया। क्या नहीं ना, ये तो लौकिक जो व्यवहार होता है वहाँ तो ये विनय की भावना सहज रूप से ऐसी हो जाती है और ऐसी होनी भी चाहिए। वहाँ कोई वो द्रव्यनियोग के सिद्धांतों को वहाँ कोई चोट नहीं पहुँचती। क्या कहते हैं, जिसके समीप धर्म मार्ग प्राप्त करे उसके समीप विनय युक्त होकर प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो ये पूरा ही धर्म मार्ग जिन्होंने बताया, ऐसे जो अरिहंत है उनके प्रति हमें कितना विनय बहुमान आदर आना चाहिए, तथा उसका शिरपंचक, शिरपंच जैसे हमने अष्टांग नमस्कार आपने सुना हुआ, अब यहाँ पंचक यानी पंचांग नमस्कार कहेंगे, पांच अंगों से नमस्कार, उसको शिरपंचक कहा। शिर यानी मस्तक, अर्थात मस्तक, दोनों हाथ और दोनों जंघाए, इन पंचांगों से तथा काय वचन और मन से निरंतर सत्कार करना चाहिए। निरंतर की बात, काया से सत्कार करना, वचन से बोलकर स्तुति या वंदना के जो शब्द है वो बोलकर वंदना करना, और मन भी वो वंदना में वो वहाँ लगाना कि मन में भी उनके प्रति जो उनका गुणानुवाद है, उनका जो आदर भाव उत्पन्न होता है, तो काया से, वचन से और मन से निरंतर उनका सत्कार करना चाहिए। नहीं, आठ अंग सभी, हाँ बताओ। छाती, हाँ, और नीचे वो घुटने, ये एंकल जॉइंट्स में, वो भी पूरे हम नमाते ना, नीचे झुककर नमस्कार करते हैं या तो सो ही जाते पूरे के पूरे, उसको अष्टांग नमस्कार कहते। साष्टांग कहने की पद्धत है मराठी में, साष्टांग नमस्कार यानी हाथ भी आगे और मस्तक जमीन पर और पूरा ही अंग, सभी अंग यानी पूरे सभी अंग जमीन पर टेक कर हम जो नमस्कार करते हैं उसको अष्टांग या साष्टांग नमस्कार। हाँ, पूरा पूरा वो अष्टांग नमस्कार की बात है। अपने में भी वो आते पूरे के पूरे से झुके हाथ आगे करके ऐसा नमस्कार करते भगवान। ये मुनियों के आचारों में ये बात है, एक खड़े खड़े भी जो नमस्कार होता है ना, तो ऐसा करके ऐसा नहीं करना, कभी हाथ ऐसा नहीं, ऐसा रखना, वो कहाँ रखना, किस तरह से रखना, और वो मस्तक झुकाना चाहिए, मस्तक ऐसा ही रखना और हाथ वो मस्तक को टेकना, वो नमस्कार नहीं कहलाता है ना। या मुनियों को कैसे हाथ रखने चाहिए, ऐसा करेंगे वो दोष है, ये इस तरह से वो पेट पर लगने चाहिए और ये यहाँ भी टच नहीं होने चाहिए, ऐसे बहुत नियम है उसके। तो यहाँ तो शिरपंचक अर्थात मस्तक, दोनों हाथ और दोनों जंघाए, इन पंचांगों से तथा काय वचन मन से निरंतर सत्कार करना चाहिए। इस तरह से मंगल के कारण का वर्णन समाप्त हुआ, अब निमित्त का कथन करते हैं। निमित्त का कथन हम पहले सुन चुके थे, अब यहाँ दोबारा निमित्त का कथन क्यों कर रहे हैं, प्रश्न था ना, कहाँ हमने निमित्त का देखा था, अभी कुछ सब आगे निमित्त का छह बातें होती ना, उसमें हमने देखा था, देखो निक्षेप के बाद देखो मैं क्या बताना चाहती हूँ, इधर है मंगल निमित्त हेतु वगैरह जो बातें है ना। हाँ, तो पहले भी उन्होंने भव्य जीव के निमित्त वगैरह आदि बातें की थी, यानी वो तो इन जनरल बात की थी उन्होंने। अब यहाँ जो है सूत्रावतार, देखो यहाँ पर किसके निमित्त का कथन किया जाता है इसको पढ़ेंगे तो क्लियरिटी हो जाएगी। यहाँ पर सूत्रावतार अर्थात ग्रंथ के प्रारंभ होने के निमित्त का वर्णन किया जाता है। तो यह कैसे जाना जाता है, जो बात मैं पूछना चाहती थी वो हम कल बात करेंगे उसकी, मैं जो बताना चाहती थी डिफरेंस, यह कैसे जाना जाता है कि यहाँ पर सूत्रावतार के निमित्त का कथन किया जाता है अन्य का नहीं। पहले जो हमने निमित्त की बातें की थी वो कौन सा ग्रंथ शुरू किया था, धवला। तो धवला ग्रंथ के शुरू में उन्होंने भव्यों के निमित्त से ये रचना की जाती है ऐसा लिखा। अब मूल ग्रंथ की ये टीका रच रहे, तो मूल ग्रंथ कौन सा है? षटखंडागम। तो षटखंडागम किसके निमित्त से लिखा गया, ये डिफरेंस यहाँ बताना चाहिए, ख्याल है ना? मूल सूत्र का अवतार, सूत्र का अवतार यानी सूत्र का सूत्रावतार किसको कहा? षटखंडागम का अवतार क्यों हुआ, उसमें निमित्त कौन है, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। यह बात ये कैसे आपने जाना? तो यह बात प्रकरण से जानी जाती है। जैसे भोजन करते समय सैंधव लाओ, इस प्रकार के वचन से सेंधे नमक का ही ज्ञान होता है।
यहाँ प्रकरण से जानी जाती है, यानी जो प्रस्तुत विषय, अभी जो चालू विषय है उसको प्रकरण का है, तो उसके आधार से हम आगे की बात समझते हैं कि कौन किसके निमित्त की बात चल रही है। तो वो कह रहे हैं कि यह प्रकरण से जानी जाती है।
हाँ देखो क्या कहते हैं, कोई भोजन कर रहा है और उसने क्या बोला, सैंधवला, तो हमने जाकर घोड़ा लाया, क्या यह ठीक है? क्योंकि सैंधव शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक घोड़ा और एक लवण, नमक। हाँ तो भोजन करने वाले को क्या चाहिए होगा? वो बीरबल बादशाह की आपको कहानी नहीं मालूम? एक दिन बीरबल ये बादशाह बाहर आ गए सुबह सुबह उठते उठते और नौकर को आज्ञा दे दी, जल्दी से बुलाओ। तो अभी महाराज की आज्ञा, मगर किसको बुलावे, वो तो बहुत रोने को आया, अभी किसको बुलाए, इधर उधर दौड़ता ही दौड़ता, इसको पूछे उसको पूछे उसको पूछे, तो कुछ ख्याल में नहीं आया। तो उसको ये पता चला ये बीरबल को पूछना चाहिए, तो बीरबल के पास गया दौड़ा दौड़ा, महाराज ये ऐसे ऐसे हुआ है। तो बादशाह ने तो बताया जल्दी लाओ, अभी मैं क्या लाऊं और किसको ले जाऊं उनके पास। तो वो क्या कर रहे थे, बुलाओ बताया था ना उन्होंने, जल्दी बुलाओ, तो मैं किसको बुलाऊं। उन्होंने जब उन्होंने कहा मैं जल्दी बुलाओ, तो वो क्या कर रहे थे, तो ये ऐसा ऐसा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा वो नाई को हजाम को बुलाओ, उसको ले जाओ। ऐसे प्रकरण कौन सा चल रहा है, तो उसके अनुसार हमें पता चलता है कि यहाँ किसकी बात हो रही है, ये किसके 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 निमित्त का कथन हो रहा है, ख्याल है ना? तो उसका समाधान कि यह बात प्रकरण से जानी जाती है। जैसे भोजन करते समय सैंधव लाओ, इस प्रकार के वचन से सेंधे नमक का ही ज्ञान होता है, वो सैंधव नाम का जो नमक है उसका। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर ग्रंथावतार के निमित्त का ही कथन किया जा रहा है। तो कथन में उन्होंने दो बताई बात बताई थी, ये क्या निमित्त में, सामने सुनने वाले का भी निमित्त और किसके निमित्त से ग्रंथ रचना हुए, ये दोनों निमित्त वहाँ बताएंगे। तो ये ग्रंथ रचना का निमित्त यहाँ बता रहे हैं, बद्ध, पहले बद्ध का है, बद्ध यानी बंधा हुआ, उसको बद्ध कहते हैं। फिर बंध यानी एक्चुअल जो बंधन है उसको बंध कहेंगे। बंध के कारण मुक्त यानी जो छूट गया है वो मुक्त, मोक्ष यानी मोक्ष पर्याय, और मोक्ष के कारण इन छह तत्वों को निक्षेप, नए, प्रमाण और अनुयोग द्वारा उनसे, ये हमने चर्चा की थी ना, निक्षेप क्या है, नए क्या है, उसकी और भी चर्चा आने वाली है अभी, और 15-20 पेज के बाद उसकी भी चर्चा फिर छिड़ेगी। तो इनको निक्षेप, नए, प्रमाण और अनुयोग द्वारा उनसे भली भांति समझकर, यानी इन छह बातों को अच्छी तरह से समझकर भव्यजन उसके ज्ञाता बने। क्योंकि पहले हम बंधे हुए है कि नहीं है इसकी बात की पता नहीं किसको, तो बंधे हुए है तो किससे बंधे है, वो क्यों बंधे है, क्यों बंध हो रहा है, तो इसमें से कोई छूट सकता है, मुक्त हो सकता है, तो हाँ भी मुक्त भी है, उनका स्वरूप क्या है, वो मोक्ष के पर्याय क्या है, और उसका उपाय कुछ हो भी सकता है या कैसे हो सकता है, ये सब जब अगर कोई जीव भली प्रकार से जानेगा तो ऐसा जो भव्यजन उसके ज्ञाता बने। इसलिए यह सूत्र ग्रंथ अर्थ प्ररूपणा की अपेक्षा तीर्थंकर से, ये सूत्र ग्रंथ अवतरित हुआ है, ये इसकी रचना हुई है, तो इसके मूल कर्ता कौन है, तो ये तीर्थंकर है। तो अर्थ प्ररूपणा यानी उसकी जो प्ररूपणा की है, उसका जो व्याख्यान किया है, उसका जो स्वरूप समझाया है, उसके तीर्थंकर से अवतीर्ण हुआ है, और ग्रंथ रचना की अपेक्षा गणधर देव से अवतीर्ण हुआ है। एक्चुअली शाब्दिक रचना जो की है वो गणधरों ने की है, और वे ही शब्द आगम जिसको कहा है, वे ही परंपरा रूप से अगले अगले आचार्यों ने उसको तो याद करके अगले अगले पीढ़ी को अगले अगले आचार्यों को सिखाया था और वो बात अभी तक चली आई है। इसलिए कहते हैं कि ये गणधर आचार्यों ने इसकी रचना की है। इस तरह से हमने यहाँ निमित्त की बात की थी, फिर कल इसको दोबारा समझेंगे। अब यहीं पर रुकते हैं। जा